अब इसके आगे हमारे पास वो आयत है जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। पिछली आयत के साथ इसका रब्त यही है कि जब अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च की पुकार हुई तो बाज़ दफ़ा एक इंसान के दिल में इस चीज़ का ख्याल आ जाता है कि मैं क्यों खर्च करूं। तो अल्लाह सुबहान ताला फरमाते हैं कि कोई छोटी हस्ती नहीं है जो तुम्हें बुला रही है, बल्कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो हस्ती है जिंदा और जावेद जो कायनात को संभाले हुए है। अगर आप यहाँ से अल्लाह ताला के नाम और उसके सिफात को अलग से हाईलाइट करते जाएं या 1-2 डाल लें तो आप देखेंगे कैंड पे कितने नाम निकलते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ अल्लाह, इलाह, फिर अल हय, अल क़य्यूम, फिर अल्लाह ताला की सिफत ला ताखुज़ुहु सिनतुम, फिर अगली सिफत वला नौम, फिर लहू मा फिस समावाती, फिर अगला मा फिल अर्द, फिर मन ज़ल्लज़ी यशफ़ इंदहु, यानी किसी की सिफारिश उसके आगे नहीं चलती मगर उसी की इजाज़त से, फिर अगली अल्लाह ताला की सिफत यालमु मा बैना अईदीहिम और वमा खल्फहुम, फिर अगली सिफत वला युहीतून बिशैइ मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, फिर अगली सिफत वसीअ कुर्सीयुहु समावात कि उसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन पर छाई हुई है, फिर वल अर्द, फिर नेक्स्ट सिफत वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा उन दोनों की हिफाजत, और फिर अल अली और अल अज़ीम। यह है वो एक आयत जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। अगर आप इसे एक आयत पे गौर व फिक्र फरमाएं तो इस एक आयत में अल्लाह ताला के तकरीबन 25 नाम और उसकी सिफात हैं। कुछ तो हमने मोटे मोटे गिने हैं ना, कुछ फिर आगे इसी की डिटेल्स में आते हैं जो हम ज़्यादा डेप्थ में जाएँ तो हमें नज़र आएंगे। दूसरी बात है कि ये कहने को एक आयत है लेकिन इसमें उर्दू के 10 जुमले हैं। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करके देखें तो हर बात जहाँ एक बात पूरी हो जाती है वो एक जुमला कहलाती है। 30वें पारे की तकरीबन 2-3 सूरतों के बराबर ये एक आयत है। बहुत लोग गलतफहमी से ये कह देते हैं कि ये कुरान पाक की तवील तरीन आयत है, हालांकि ये तवील तरीन नहीं है। सबसे लंबी आयत भी हमारे इसी सबक में आने वाली है, सूरह बकरा ही में, जिसको आयत दैन कहते हैं। ये तवील नहीं है लेकिन अजीम है। इस आयत के बारे में बहुत खूबसूरत रिवायात मिलती हैं जिनका खुलासा क्या है कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का पढ़ लेना इंसान के और जन्नत के बीच में मौत के सिवा किसी चीज़ को हायल नहीं होने देता। फिर इस सूरत के रात को बिस्तर पर जाते वक्त नबी सल्लम से पढ़ने की रिवायात भी हमें मिलती हैं कि आप सोने से पहले इसको पढ़ते थे। हिफाजत वाली आयत है, और जो ही ये आयत आती है तो फौरन इसके साथ अबू मंज़र सहाबी का जिक्र भी जहन में आ जाता है कि एक मौके पे जब अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा कि तुम्हें पता है कि अल्लाह की किताब की वो कौन सी आयत है कि जिसके अंदर ये सिफात हैं, तो आपने जब आयतुल कुर्सी कहा तो आपने फिर उनको दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें यह इल्म मुबारक करे। फिर इस आयत के बारे में ये बात भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये आयत शैतान ने सिखाई थी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, जब माल गनीमत में चोरी करने की नीयत से शैतान बार बार आता था, और बिल आखिर ये बात कहकर कि मैं तुम्हें एक ऐसी आयत बता देता हूँ कि तुम अगर उसको पढ़ लोगे तो फिर मेरे शर से बच जाओगे, और फिर उसके बाद ये आयत बताई। गोया कि ये हिफाजत की आयत है, लेकिन सवाल पैदा होता है क्यों? एक ही आयत का कोई जंतर मंतर है, कुछ हूँ मंतर है, क्या वजह है कि शैतान इसके पास नहीं आता और इसको पढ़ते ही आप जन्नत में चले जाते हैं और मरने के बाद, और दूसरी है कि रात को पढ़े, इसकी वजह इसका मज़मून है। आयतुल कुर्सी तौहीद की सारी इकसाम को बयान करती है और शिर्क की जितनी मुमकिन सूरतें हैं, आगे हम पढ़ेंगे जब इंशाल्लाह किताब तौहीद पढ़ेंगे तो उसमें आपको वैसे भी मिल जाएगा वो कि शिर्क मुख्तलिफ तरह से दुनिया में फैला, तो शिर्क उस दौर का भी और आज के दौर के भी जितने मुमकिन तरीके शिर्क के थे वो सारे के सारे इस एक आयत में उनका रद्द बता दिया गया। इस आयत में अल्लाह सुबहान तआला का तारुफ है। सिर्फ यही नहीं है कि अल्लाह क्या है, ये भी है कि अल्लाह क्या नहीं है। इस एक आयत को अगर हम एक स्ट्रेच में पढ़ते हैं और दिल के ऊपर इसकी शिद्दत को महसूस करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि फिर अल्लाह के रास्ते का कोई तकाजा हमारे सामने आए और फिर इंसान उससे कन्नी कुतराए। इससे पिछली आयत में हमने देखा कि जब खर्च की दावत दी गई और बता दिया गया कि हिदायत का चेक एक वैलिड डेट तक है, खर्च आज नहीं करोगे तो कल तुमसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ऐसे लोग जो खर्च करने से इनकार करें उनको वहाँ काफिर तक कह दिया गया कि ऐसा शख्स जो दीन को मغلوب भी देखे और इसको गालिब करने की कोशिश में भी हिस्सेदार ना हो, ख्वाहिश तो रखे लेकिन करे ना, तो समझ लो कि उसके दिल में दीन का असल दर्द ही नहीं है। अब यहाँ आयतुल कुर्सी की सूरत में अल्लाह ताला इंसान के दिल को खुलवाता है और एक रिवायत में इसको तमाम आयात की सरदार कहा जाता है। आपने फरमाया कि सूरत अल बकरा कुरान पाक की चोटी है और इसमें एक ऐसी आयत है जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। आपने फरमाया कि हर शय की एक चोटी होती है, यकीनन कुरान पाक की चोटी सूरत अल बकरा है। इसमें एक आयत है जो आयते कुरानी की सरदार है और वो आयतुल कुर्सी है। थोड़ा सा इसके मजमून को मजीद समझ लेते हैं क्योंकि आयत बड़ी वाजे है, सिर्फ अल्लाह ताला के नाम और सिफात हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पहले ही खुलासे में समझ लें तो फिर आयत समझनी आसान होती है। आप देखिए कि पीछे हमने आयते बिर पढ़ी थी, लैसल बिर्र में, उधर दीन कहाँ से शुरू हुआ था, इल्ला मन आमन बिल्लाही के बाद एक सिफत थी। इसी तरह तीसवें पारे में हमें एक सूरत, सब कोई तकरीबन जुबानी आती है, एक सूरत है तीसवें पारे की, सूरतुल असर, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। ठीक है, अब अगर आप कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों को जमा करें, नंबर एक आयते बिर लैसल बिर्र जो पीछे हमने ट्री ऑफ इस्लाम देखा था, दूसरी आयतें सूरतुल असर को देखें, तो इन दो आयतों में आप कह सकते हैं कि हिदायत और निजात की सारी शराइत जमा हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम कुराने पाक की आखिरी सूरतों में से सूरत अल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, अगर आप उसको और आयतुल कुर्सी को भी जोड़ लें तो ये एक ऐसा खूबसूरत पेयर बन जाता है कि जो तौहीद का खूबसूरत मजमुआ हमारे सामने पेश करता है। जामे तरीन आयत है और इसमें अल्लाह ताला अपने माबूदे बरहक होने की बात करते हैं कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह वो है कि जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। पहला नाम देखिए कि अल्लाह ताला का अल्लाह, ये है अल्लाह ताला का असली नाम, जैसे हम में से हर एक का एक अपना असली नाम होता है ना। फिर कुछ हमारे सिफाती नाम होते हैं, कोई लाड में हमें कुछ कह देता है, कोई प्यार में कहते हैं, तो अल्लाह ताला के 200 से जायद नाम हैं और इससे भी ज़्यादा वक्त के साथ साथ डिस्कवर होते जाएंगे आप किताबों में से, लेकिन नाम अल्लाह असल नाम है। ये वही नाम है जिसके साथ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे पुकारा था, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, ऐ मूसा बिला शुबा मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। और ये असल में अल इलाह है, इसलिए ये नाम किसी का नहीं रख सकते। अल्लाह ताला के बाकी सिफाती नाम हम रख सकते हैं। दूसरी बात है कि इस नाम की जमा नहीं है, ना ये लफ्ज़ किसी लफ्ज़ से निकला है और ना इस लफ्ज़ का कोई तर्जमा मुमकिन है। बाज़ लोग कहते हैं गॉड, अल्लाह के लिए लफ्ज़ खुदा बोल देते हैं उर्दू में, मुमकिन ही नहीं है। और इलाह कहते हैं उस हस्ती को जो बंदे को हैरान कर दे, और हकीकत यह है कि अगर आंख देखने वाली हो तो अल्लाह की कुदरत के निशान हर जगह और हर वक्त हमारे इर्द गिर्द हैं। ये खूबसूरत कायनात जो हम सब के सामने फैली हुई है, ये नीला आसमान जो हमारे सरों पर बगैर सतूनों के खड़ा है, ये आफताब और माहताब जो कभी तुलू होते हैं कभी गुरूब होते हैं, और अगर रात को सितारों भरा आसमान जो इतना खूबसूरत मंजर पेश करता है कि काली रात पे सिल्वर सितारे ढके हुए हैं, और अगर आप बुलंद बाला पहाड़ों को देख लीजिए जिनके ऊपर सरसब्जो शादाब दरख्त उगे होते हैं, कभी आप खूबसूरत फलों को देखिए, मज़े की खाने की चीज़ों को देखिए, मौसमों का तगैयर और तबदुल देखिए, हवाओं की गर्दश देखिए, बादलों का तैरना देखें, एक एक चीज़ बोल बोल के कह रही है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, पुकार पुकार कर कहती है कि कोई है इस कायनात का मालिक खालिक जो हम सबको पुकारता है। अल्लाह ताला की ज़ात पे गौर व फिक्र करना, यानी अल्लाह कौन है इस पे गौर नहीं करना चाहिए। हदीस में आता है कि शैतान बंदे को इतना बहकाता है कि उसको सोच पे लाता है, अच्छा कौन है अल्लाह, फिर उसको किसने पैदा किया, करते हुए इंसान बाज़ मुनकिर होता है, लेकिन अल्लाह ताला की कारीगरी पे गौर व फिक्र की दावत तो कुरान पाक में बार बार दी गई। सूरत बकरा की आयत 164 में हम पीछे पढ़ चुके, इन नफी खल के समावाती वल अर्दी वख्तिला फिल लैली वन नहार, जिसको आपको लिखाया गया था कि आयतुल आयात, एक ही आयत के अंदर आठ नौ मुख्तलिफ चीज़ों का तस्करा। फिर इसी तरह सूरत नूर की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात का तस्करा किया कि वल्लाहु खलक कुल्ल दाबतिन मिम्माइन, अल्लाह ने हर मखलूक को पानी से पैदा किया। बास पेट के बल चलते हैं, बास दो टांगों पे चलते हैं, बास चार पे चलते हैं, जो चाहते पैदा करता है। बिल्कुल तासुब से खाली होकर अगर आप कायनात की जो चीज़ें आपके सामने हैं उस पे गौर करते जाएंगे तो आपको अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ दिखेगा। पहले बंदा गौर व फिक्र करता है ना, तो लफ्ज़ अल्लाह का पहला मानी कि वो ज़ात जो हैरान कर दे उस पे गौर होता है। सोना देख लीजिए, जागना देख लीजिए। सूरत रूम आयत 23 में अल्लाह ताला कहते हैं वमिन आयात ही मनामुकुम बिललैल वन नहार, उसकी तो निशानियों में रात और दिन का सोना जागना है और तुम्हारा उसके फसल को ढूंढना है। असल में हम ऐसे चूंकि एक ही प्रोसेस में चल रहे होते हैं ना तो गौर नहीं करते। ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इसी तरह सूरत मोमिनून में भी आता है, सूरत नाहल में भी आता है कि वह इन्ना लकुम फिल अनाम इला इबरा, तुम्हारे लिए चौपायों में अल्लाह की कुदरत के निशान है। तुम इनके पेटों में जो गोबर और लहू के बीच में से खालिस दूध हम निकालते हैं उसको पीते हो। कभी आपने दूध पिया और उस दूध को पीते हुए सोचा कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, कौन सी हस्ती है कि जो ये सब कुछ लेके आती है। सूरत अंबिया आयत 30 में अल्लाह ताला कहते हैं वजअलना मिनल माई कुल्ल शयइन हय्युन, मैंने हर चीज़ को पानी से ज़िंदा किया, यानी हर चीज़ पानी से बनती है। तो इंसान को अकल दी, सोच दी। ये बोलना देखिए क्या चीज़ है, हम बोलते हैं, ये सुनना क्या चीज़ है। अगर हम पत्थर के पत्थर होते, कुछ ना सुनते, कुछ ना बोलते, जहाँ किसी ने बिठा दिया बैठ जाते। अल्लाह कहते वलकत करमना बनी आदम, सूरत बनी इसराइल आयत 70, हमने बनी आदम को करामत दी, बुजुर्गी दी, लेकिन इंसान कितने धोखे में है। इंसानों की बनाई हुई छोटी छोटी लाइटों, ट्यूब लाइट्स, कहीं कारपेट्स, कहीं खिड़कियाँ, उनको देख देख के हैरान होता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत को देख के हैरान नहीं होता। सूरत इन्फितार आयत 6 और 8 में अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे रब करीम के बारे में किसने धोखे में डाल दिया। अल्लज़ी खलकक फसव्वाक फअदलक, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे दुरुस्त बनाया, फी अय्यि सूरतिम मा शा रक्कबक, जिस सूरत में चाहा। अल्लाह अकबर, फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। जितना आप गौर करेंगे ना तो आप हैरान होंगे, और हैरान होने की एक आखिरी चीज़ हमारी अपनी ज़िंदगी के वाक़यात। क्या आपकी अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे वाक़यात नहीं हो जाते कि आप हैरान ही हो जाते हैं ये कैसे हो गया। बिल्कुल मरने के करीब होता है कोई, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, बंदा ठीक हो जाता है। घर टूटने के करीब, बिल्कुल पक्का जुड़ जाता है। और सारी उम्र के जुड़े हुए मियाँ बीवी आखिरी उम्र में जुदा हो जाते हैं। देखा जाए तो अल्लाह हर लम्हे अपनी कुदरत की निशानियाँ जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी में होती हैं उस पर भी हमें हैरान करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि मैंने अपने इरादों के टूटने से रब को पहचाना। कभी सोच भी नहीं सकता बंदा कि वो कहाँ होगा, किधर होगा। आज हम ये क्लास ले रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, सच बताएं ऐसे 4-5 माह पहले हमारे तसव्वुर में भी था, किसी के तसव्वुर में नहीं था। कल किसी मौजू पे किसी से कल या परसों बात हो रही थी, तो एक टिकट थी हमारे पास, तो जब हमने वो करवाई तो वो नॉर्वे से करवाई हुई थी, किसी की टिकट थी। तसव्वुर में भी नहीं था कि हम लंदन में आएंगे, 3-4 माह पहले की बातें हैं। अल्लाह ताला अपनी ज़ात से अपने काम करवा लेता है, जो चाहते हैं करवाता है। ये है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा। जब अल्लाह की ये सिफत पूरी होती है ना कि हम गौर कर दें, तो फिर इलाह का दूसरा मानी सामने आता है, और वो क्या है? माबूद। इलाह किसको कहते हैं? जिसकी इबादत की जाए। और हकीकत के गौर व फिक्र की आदत ना हो तो इबादत में भी चाशनी नहीं होती। जैसे हम नमाज़ें पढ़ के भी फीके खोखले टुंड मुंड दरख्तों की तरह खड़े होके नमाज़ें पढ़ लेते हैं, तो पहले गौर व फिक्र की आदत, हैरान हो अल्लाह की ज़ात पे। बच्चों को गोदों में देख के हैरान हुआ करें, ये कैसे बड़ा हो रहा है, ये कैसे पीता है, इसको रोना किसने सिखाया, इसको क्रॉल करना कौन सिखा रहा है। रात को नींद आती है तो हैरानगी नहीं होती, बच्चा बात करते करते आंखें बंद करके सो जाता है, मुंह में दूध डालो तो यूं सोता है जैसे इसको अब होश ही नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम, वो हई भी है और कय्यूम भी है। अल हई को समझना है तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह की जात अगर तो वो हमारी जरूरियात को पूरा करने वाली है, तो फिर उसको हमेशा जिंदा ही रहना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि खुदा फौत हो गया। आप कहेंगे कोई ये भी कहता है? बिल्कुल कहते हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ कौमों ने खुदा का जो नजरिया कायम किया, उनके अल्लाह के बारे में क्या ख्याल आता है? अगर आप रोम जाएं तो बहरे रोम के साहिल पर कुछ कौमें इस अकीदे की हामिल गुजरी हैं। उनके गुमान के मुताबिक हर साल फलां तारीख पर इनका खुदा फौत हो जाता है और दूसरे दिन असरे नो वजूद में आ जाता है। चुनाचे जिस रात वो फौत होता है, उस दिन वो एक पुतला सा बनाते हैं बाल नामी बुत का और उसको जला देते हैं, कहते हैं आज हमारा खुदा फौत हो गया। फिर अगला दिन जब सुबह होता है ना, तो उसके जन्म लेने की खुशी में रंगरलियां मनाते हैं, कहते हैं अब खुदा फिर जिंदा हो गया। हिंदुओं में देख लीजिए, अवतारों का नाम आपने सुना होगा, उनके अवतार मरते हैं और फिर कैकेयी जन्म लेते हैं। खुद मसीहियों का हाल देख लीजिए कि अपने जोम में खुद कहते हैं कि खुदा का इकलौता बेटा आया और हमारी खातिर सलीब पे जाके मौत के घाट सो गया, और कहते हैं उसको खुदा है लेकिन कहते हैं कि फौत हो गया। लेकिन एक मुसलमान घर में पैदा होने वाले बच्चे को पैदा होते से लेकर जो ख्याल दिया जाता है, अल हय अल कय्यूम, वो जिंदा भी है। जिंदा तो हम भी हैं, लेकिन हमारी जिंदगी हमारे इख्तियार में है? बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इख्तियार में होती तो वापस जाते? ना आने पे जोर ना जाने पे जोर, अपनी मर्जी से ना आए ना अपनी मर्जी से चलेंगे। वो कहते ना कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। तो हमारी जिंदगी अपनी नहीं है। अगर होती तो कभी को बीवी अपने शौहर को मरने देती? कोई माँ अपने गोद के बच्चे को दुनिया में से जाने देता? नहीं जाने देता। ये अल्लाह की जिंदगी है, वो हयाते मुस्तार नहीं है, उधार ली भी नहीं है, हमारी अपनी है। फिर आप देखिए हमारी जिंदगी के कई फेज हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा। अल्लाह सुब्हान तआला की जिंदगी के ये कोई फेज नहीं है। आज वो लोग जो इस दुनिया को एक सडन बिग बैन का नतीजा समझते हैं कि एक धमाका ओवर बन गया, वो भी कहने पे ये मजबूर हो गए हैं कि किसी ऐसी हस्ती ने, खुदा नहीं कहना चाहते, वजह क्या है कि फिर उसकी माननी पड़ेगी, बस बड़ाई का एहसास है ना, इसलिए अल्लाह ताला की बात मानने से रुकने के लिए अल्लाह का इनकार करते हैं। लेकिन वो भी कहने पे मजबूर है कि कोई एनर्जी थी जो प्रोड्यूस हुई और जिसने ये किया। वक्त और कैद की लिमिट से आज़ाद है, बचपन जवानी बुढ़ापे से आज़ाद है, और अल कय्यूम कायम रखने वाला, सारी कायनात को संभालने वाला। अगर अल्लाह सुब्हान तआला अल कय्यूम ना होता तो आप बताइए कि कायनात का निज़ाम इतना स्मूथ चल सकता था? ड्राइवर सो जाए तो गाड़ी का क्या हाल होगा? आप सोच सकते हैं। औरत घर को ना देखेगी तो कौन उसको देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा। तो अल्लाह ना सिर्फ ये कि कायम है, बल्कि वो हमें भी कायम रखता है। कहाँ कहाँ हम गिर जाते हैं, अल्लाह फिर उठा देता है। कभी हिम्मतें टूट जाती हैं, कभी इरादे टूट जाते हैं, लेकिन वो आके हमें थामता है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको ना तो नींद आती है ना ऊँग आती है। क्यों? कि अगर वो सो जाए तो बंदे पूछें, या अल्लाह दे दे मुझे ये, रब्बी रब्बी बंदा करता रहे, पता चले जी माबूद सो गए हैं, कैसा लगे? आप किसी के दर पे जाएं, पता चले फ़ोन कर रहे थे, बड़ी ज़रूरत में, और वो कह रहे वो मेरी आँख लग गई थी, उतनी देर में आपके काम का वक्त भी चला गया, खुशी होगी? मेरे और आपके लिए अल्लाह नहीं सोता तो बोलिए कि मैं उसके लिए क्या करूं? क्या फिर मैं उसके दीन के लिए थोड़ा जाग नहीं सकती? फिर मुझे फजर के बाद का जागना क्यों मुहाल लगता है? फिर मैं रात को क्यों देर तक जागती हूँ अपने कामों के लिए, और अल्लाह के दीन के लिए जागूं तो मुझे यूं नींद आने लगती है कि इससे ज़्यादा गहरी नींद कभी और आएगी नहीं। अल्लाह के इस नाम पे गौर व फिक्र का हक ये है कि इंसान गौर व फिक्र करे और कुछ वक्त अपनी ज़िंदगी का अल्लाह के लिए ऐसा लगाए कि जहाँ कुर्बानी दे नींद की। हमारा हाल ये है कि किसी एक मेहमान के आने पे हम जाग लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला के लिए जागना और जबकि नींद छोड़ के उठना पड़े तहज्जुद में, सबसे मुश्किल लगता है इंसान को जागना। आप फील करें, आप किसी की खिदमत में एक पाँव पे खड़े होते रहेंगे सारा दिन, मेहमान है, खिला रहे हैं, पुकार रहे हैं, कर रहे हैं, सबसे मुश्किल क्या लगता है किसी के लिए? नींद छोड़ के उठना। आप काम करें करते रहें, थकते जाएं, एक चाय की प्याली, खाना मीठा गरम, बातें भी कर लेंगे, शॉपिंग भी करा लेंगे, लेकिन अगर आपको किसी मेहमान के लिए सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़े एयरपोर्ट छोड़ने या लेने, या उनके लिए उस वक्त कुछ खाना पकाना पड़े, तो नींद छोड़ना बहुत मुश्किल है। अल्लाह को भी उस वक्त प्यार आता है जब हम उसके लिए नींद छोड़ते हैं। ये जो फजर की नमाज है ना, वो असल में यही सिखा रही है कि ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जब उसको नींद नहीं आती तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे फिक्रों में है, तो तुम इतने बेफिक्र हो कि क्यों सोगे, उठो काम करो जाको। और जब तक हम अल्लाह ताला के लिए ये सब नहीं करेंगे, हमें अल्लाह से मोहब्बत नहीं आएगी। मैं यह बोल रही हूँ तो मुझे वो सारी सीरीज याद आ रही है असमाल हुस्ना की। अगर आपको मुश्किल ना लगे, टाइम आप अपनी मर्जी से चूज कर लें, जितने नाम आयतुल कुर्सी में है ना, आप इन नामों की तफसीर सुन लें, और अगर आपको यहाँ सुना दी जाए तो सोने पे सुहागा, यकीन करें, ऐसे लगता है कि दिल खुल जाता है। करना चाहते हैं? यकीन करें, ये एक नया तारुफ होगा। आपने उस रब को जाना ही नहीं हुआ जिसको आप इन नामों की सिफात की रोशनी में सुनेंगे। कुछ करते हैं आपके लिए, कोई अगर सब्जेक्ट थोड़ा इधर उधर करना भी पड़ा तो सुन के तो देखिए, असल बाब ही उस वक्त खुलता है जब अल्लाह से ताल्लुक पैदा होता है, वरना तो ये बातें समझ ही नहीं आती। आप देखिए कि अल-क़य्यूम का लफ्ज़ अल्लाह ने इस तरह बोल दिया, जबकि क्रिश्चियंस ने हजरत ईसा के बारे में क्या सोचा? उनका अकीदा क्या है कि जिस तरह बेटा बगैर बाप के पैदा नहीं हो सकता, तो हजरत ईसा के साथ जो उनका मामला, वो क्या है? कहते हैं चूंकि इसका बाप नहीं, तो नौजबिला ये खुद खुदा है। उन्होंने खुद एक मजबूरी को कबूल कर लिया। इस्लाम इन सारी बातों से अलग होके क्या कहता है कि अकुल्लाहद लम यलिद वलम यूलद। तो अल्लाह ताला यहाँ हर अकीदे के ऊपर जद लगा के बता रहे हैं कि देखो तुम फिक्र करो, अगर वो हय्युल कय्यूम ना होता तो जमीन आसमान कब के गिर चुके होते। सूरत अल अंबिया में आता है, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर इस जमीन आसमान में एक अल्लाह के सिवा दूसरे इलाह भी होते तो जमीन आसमान का निजाम बिगड़ जाता। एक ड्राइविंग सीट पे दो लोग बैठने की कोशिश करें तो गाड़ी गिरेगी ना। रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे अल्लाह ताला से पूछा था कि अल्लाह ताला आप सोते नहीं है, लाड लेते ना तो पूछ लिया होगा। कहा नहीं मूसा, मैं नहीं सोता। कहा क्यों? कहा इधर आओ। उनके हाथ में दो शीशे की बोतलें पकड़ा दी, कहा इनको लेके खड़े हो जाओ, सोना नहीं तुमने, ये बोतलें गिरे ना। मूसा खड़े हो गए, खड़े हो गए। अब कितनी देर खड़े रहते, आखिर थक गए, ऊंग आई, नींद आने लगी। और जब इतना गहरा झोंका आया नींद का, अपने ही दोनों हाथ आपस में टकराए तो दोनों बोतलें गिरी या टूट गई। कहा मूसा देखो, अगर मैं सो जाऊं तो ये जमीन और आसमान इस तरह आपस में टकरा जाए। बाज़ ज़रा गाड़ी चलाते हुए नींद का झटका आता है तो गाड़ी गिर जाती है इधर उधर। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको नहीं नींद आती। आप इस्लाम के अलावा दूसरे पेगन रिलीजन्स को देखिए, उनके देवता नींद से झूम भी जाते हैं, और वो खाते भी हैं और पीते भी हैं और सोते भी हैं। बाज़ दफ़ा इतनी गंदी कहानियां बनी हुई हैं उनके अपने खुदाओं के कहानियों में कि गफलत की हालत में क्या कुछ उनसे हरकतें हो जाती हैं। इसी तरह आप देखिए क्रिश्चियन एंड ज्यूज़ का एक मुश्तरक अकीदा है, और वो क्या कहते हैं कि ये कायनात अल्लाह ने 6 दिन में बनाई और 7वें दिन आराम किया। ये तो आपने सबने सुना होगा ना कि 6 डेज में बनी, 7वें दिन में आराम लेने की जरूरत पड़ गई। इस्लाम कहता है कि ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह नहीं थकता, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्थ, इसी की मलकियत में है जो कुछ आसमानों और जमीन में। लहू, ये जो लाम है ना, ये मलकियत का लाम है, मालिक है वो उसका। और शुरू में कहा, ये भी तो कहा जा सकता था ना कि मा फिस समावाति व अर्दी लहू, जो कुछ जमीन और आसमान में उसका है, बल्कि क्या कहा, उसका है जो कुछ है जमीन और आसमान में, गोया के बिला शिरकते गैरे सब कुछ उसका है। क्या कुछ है जी आसमानों जमीन में, आप 10 चीजें गिनवा देंगे, सूरज चांद सितारे पहाड़ दरिया, एक को भूल जाते हैं। मैं अना आई एम, मैं किसकी हूँ? ये जो किसी के मरने पे हम एक बात पढ़ते हैं ना और एक जुमला बोलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये उसकी तफसीर है, तुम अल्लाह के हो और उसी की तरफ लौट के जाओगे। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय ममाती, सब जीना मरना उसका है। और जब तक ये लहू के नीचे मा फिस समावाति वल अर्द के साथ अपना नाम नहीं लिखेंगे, बंदगी नहीं आएगी। देखिए, जो किसी का बन जाता है फिर क्या उससे कुछ छुपाता, उससे लिया दिया रहता है। जो चीज़ आपकी अपनी होती है हर वक्त आपके पास है। मिसाल है कि एक घड़ी है, अगर आपकी बाजू पे बंधी हुई, आपकी है ना, हर वक्त आपके पास होगी। सेलफोन ले लें चले आज के दौर में, कभी ऐसा हुआ कि सेलफोन हो आपका लेकिन आपके पास अवेलेबल ही नहीं, यूज़ करना चाहें तो कर ना सकें, उसको इस्तेमाल करना चाहें, किसी को देना लेना चाहें, नहीं कर सकें, नहीं कर सकते ना। तो जिस तरह बेजान चीज़ें हमारी होती हैं ना, तो हम उनसे फ़ायदा उठाते हैं, तो हम गोश्त पोश के ये इंसान अल्लाह के हैं। आप सेलफोन की जगह खुद को रखें और अपनी जगह अल्लाह को लाइए, सिर्फ समझने के लिए, उसको ज़रूरत कोई नहीं हमारी। लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द का तकाजा है कि बंदा हर वक्त अल्लाह को अवेलेबल रहे। इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम काल अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन। ये वजह थी कि वो इनकार नहीं करते थे। दाहदा ने क्यों इनकार नहीं किया मंजल्लज़ युक्रिदुल्लाहु कर्दन हसना को सुनकर? क्योंकि उनको पता था कि लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, जब है ही उसका तो मैं इनकार क्यों करूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये क्या सिखाता है? अल्लाह मैं हाजिर, तू कह के देख। सहाबा के नाम मेरे आंखों में आते हैं कि वो कहते थे एक दफा अल्लाह ये मौका लाए फिर अल्लाह देख लेगा मैं करके क्या दिखाता हूँ। अल्लाह ने उनके बारे में कुरान में आयतें उतार दी कि कोई ऐसा है कि जो अपनी मन्नतों को भी पूरा करना चाहता है, कोई कर चुका है। सूरह अल-अहज़ाब में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अपना नाम लिखें, ये दिल से सुनने वाली आयत है, ये कोई दिमाग के ऊपर बोझ लेने वाली आयत नहीं है। अल्लाह के बनी है बंदगी, रब की, नफ्स की नहीं, गुलामी नहीं, सबसे बेनियाज होके उसके। फिर आपको मजा आएगा नमाजों में और कुरान में और उसकी किताब में पढ़ रही हूँ। यकीन करें बंदे को झुरझुरी आ जाती है ये सोच के कि मैं किस मालिक की किताब पढ़ रही हूँ, किसकी बात पढ़ा रही हूँ। इंसान कांप के रह जाता है। मंजल्लज़ी यशफ़ौ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो इसकी जनाब में इसकी सिफारिश, किसकी इजाजत के बगैर सिफारिश करे। यहाँ फिर देखिए कि मुशरिकीन के ना बातिल अकायद, कहते थे कि जो मर्जी करो दुनिया में, अपने खुदाओं को पूजो, बुजुर्गों को मानो, उनकी कब्रों को सजदे करो, और कल क़यामत के दिन वो हमारी बख्शिश कर देंगे। और ख़ास तौर पे नबियों के और फरिश्तों के नाम के साथ उन्होंने ये तसव्वुरात रखे थे कि ये सिफारिश कर देंगे। अल्लाह कहते हैं तुम अपने बुतों और पत्थरों और खुदाओं को लाओ सामने, बड़े बड़े फरिश्ते और नबी उस दिन कांप रहे होंगे, तुम बताओ ये पत्थर के बुत तुम्हारी सिफारिश कैसे करेंगे। हदीसे शिफात है नबी सल्लम की हदीस जिसमें आता है कि आपने फरमाया कि मैं अर्श के पास आऊँगा, इमेजिन करें आप, और सजदे में गिर जाऊँगा, और अल्लाह मुझे उस हाल में छोड़ देगा जितनी देर वो चाहेगा। और उस वक्त अल्लाह नबी सल्लम अल्लाह की कोई ऐसी सिफात बयान करेंगे, कहते हैं जो इस वक्त नहीं मुझे पता, वहाँ सिखाई जाएगी, और इतना मैं उस वक्त आहुजारी करूंगा कि बिल आखिर अल्लाह ताला कहेंगे कि ए मोहम्मद अपना सर उठाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहिए आप क्या कहना चाहते हैं, और जो आप सिफारिश करेंगे वो कबूल की जाएगी। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। सिफारिश हिसाब शुरू करने के लिए भी होगी, इस सिफारिश जहन्नमियों को जन्नत में ले जाने के लिए भी होगी, और ये सिफारिश सिर्फ तौहीद वालों के लिए होगी, मुशरिकीन को ये सिफारिश नहीं मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा ने अल्लाह के नबी से पूछा कि वो कौन खुशबख्त होगा जिसको आपकी शिफात नसीब होगी। अब आप सोचिए किसकी? नाम कहेंगे मेरा नाम लिख लो, मेरी ही हक में ही होगी। और जो जितना अमल से दूर होता है वो ज़्यादा ही नबी का नाम ले लेके झूमता है कि कोई बात नहीं हम नबी के उम्मती हैं। तो जब सवाल किया गया तो आपने फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पूरे खलूस कल्ब के साथ कहा होगा। ये बुखारी की रिवायत है। बस कह के छोड़ दिया, कलमा पढ़ा और छुट्टी, ला इलाहा के तकाजे उसके साथ अपने आप को लेना है, तो आप कह लें कि ये शिफात तौहीद वालों को कयामत के दिन इनाम मिलेगा। थोड़ी सी बात इस पे कर देती हूँ क्योंकि आयतुल कुर्सी को लोग शौक से सुनते हैं, तो इसी में ये मौजू समझ जाएं। आप देखिए कि सिफारिश क्या है, अल्लाह का फैसला। सिर्फ नबियों वलियों जिसको भी कुरान की आयतें सूरतें और इसी तरह शुहदा इसी तरह हाफिज़े कुरान जिसको अल्लाह चाहेगा, जिसका कुछ ना कुछ दुनिया में इस तरह का काम होगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऑनर देंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, बाकी बात आप खुद समझ जाएंगे, कि जैसे किसी भी स्कूल या कॉलेज में बच्चों की ग्रेजुएशन होती है, सारे रिजल्ट बन चुके, फ़ारिग फर्स्ट सेकंड थर्ड के नामों के खूबसूरत गिफ्ट्स रेडी हैं, लिस्टें लगी हुई हैं। एक बड़ा स्टेज सजा के उस पर सब सजा लेते हैं और शहर के किसी भी मोअज्जज़ शख्स को बुलाते हैं मेहमान खुसूसी के तौर पे। एंड पे क्या कहते हैं, आए आप अपने हाथ से इनको इनाम दें। आप बताइए कि उस मेहमान खुसूसी की कोई अपनी मर्जी होती है? नहीं होती ना। जो वो कहते हैं वो उस बच्चे को दे दे के भेजते रहते हैं। दिस इज सिफारिश। नबी सारी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए रहे, लेकिन दुनिया में उनको खातिर ख्वाह इज्जत नहीं मिली, उनका हक लोगों ने नहीं दिया। इसी तरह नेक लोगों का हाल है, जिन्होंने भी दीन की खिदमत की, लोग उनको हक देते भी तो कितना को देते। अल्लाह उनको क्यामत के मैदान में बुलाकर एक किस्म की ऑनर देगा कि आप इनको अपनी मर्जी से दे दें। ये नहीं हो सकता कि चोरों, चक्कों, डाकुओं, जानियों, पापियों को अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से दे सके। नहीं, इल्ला बिइज़्निही। और मैं आपको दावत दूंगी, इस पे 2 CDs हैं, वेबसाइट पे मौजूद हैं। अभी यहाँ अगर हुकअप है तो मैं दिखा देती हूँ, लेकिन दावा सीडीज के अंदर आयतुल कुर्सी की तफसीर है। इस मौके पे इसलिए कह रही हूँ आपको कि शिफात सिफारिश के बारे में वहाँ शायद मेरा हल है कि आधा पौना घंटा बात हुई है। पूरा कॉन्सेप्ट उस साल मैंने पूरा का पूरा डिस्कस किया था, इसी वजह से फिर वो सीडी भी बनवाई कि वो बहुत ही ज़्यादा अकीदे को खोलने वाली है। और मेरा ख्याल है दावा सीडीज में बनी भी होगी, नहीं है तो आप लोगों को बनवा देते हैं इसी वीक में, किसी तरह उसको अपनी गाड़ियों में सुने। सिफारिश के बारे में इंसान का बहुत नुक्ता नज़र खुलना चाहिए। बेअमल करने वाली चीज़ों में एक सिफारिश की उम्मीद होती है। दुनिया में भी तो ऐसे ही है ना। अगर कोई आपकी कल सिफारिश करे तो आप क्यों टेस्ट की तैयारी करें? कोई आपको जॉब दिलवा देता है तो आप क्यों इतना पढ़ें? तो लिहाजा क़यामत के दिन ये सब कुछ जो हमने सोचा हुआ है ये बिल्कुल रॉन्ग है। सिफारिश तो सिफारिश, नबी तो शिकायत लगाने लग जाएंगे। इसलिए फरमाया कि तुम उसकी आस पे काम न छोड़ो, नुकसान उठाओगे। या लमुमा बैन अईदीहिम वमा खल्फहुम, वो जानता है जो बंदों के आगे और जो उनसे ओझल है। अल्लाह अकबर, हम तो इतने कमज़ोर हैं कि हमें इस वक्त भी नहीं पता हमारे घरों में क्या हो रहा है। मुझे ये नहीं पता मेरे पीछे क्या हो रहा है, और आपको ये नहीं पता कि आपके पीछे कौन आ जा रहा है। हमें ये नहीं पता कि इस वक्त आने वाले घंटे में हमारे लिए क्या खैर छुपी हुई है, और इससे जाने वाले घंटे में पीछे क्या चीज़ थी। एकदम हादसे नहीं हो जाते? इंसान कहता है पता ही नहीं था। हाय क्या पता, हाय मैं उधर ना ही जाती। एकदम चोरी हो जाती है, कुछ और एकदम आता है और आपके हाथ से पर्स छीन के ले जाता है। आप परेशान हैं, आप चलते रहे वही जूता जो आपने इतने अरमानों से लिया, फिसलता है पाँव और आपके पाँव में मोच आ जाती है कि नहीं? हमें नहीं पता आने वाला मिनट हमारे लिए खैर का ला रहे हैं कि शर का आ रहा है, उसको पता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि माँ बहन आई दी है, मैम अपने आने वाली नस्लों को देख लें। आपको पता है कि आपकी नस्लों में कितने बच्चे आने हैं? पोते, नवासे, उनके बच्चे, अपने बच्चों का भी नहीं पता होता। पीछे चले गए खल्फा हम, चले नानी को हम जानते हैं, दादी को जानते हैं, पर नानी को भी जानते हैं, पर दादी का भी जिक्र सुना, उसके पीछे कौन थे? कोई जानता है? आप में से किसी को अपनी नानी की नानी का नाम आता है? तो कल हमारा भी तो नाम नहीं रहेगा। आज हम इतने हरफन मौला बनते हैं, लेकिन एक दो तीन नस्लों के बाद किसी को हमारा नाम भी याद नहीं होगा। आज हम शोहरत के पीछे मरते हैं, अपना नाम दिखाना चाहते हैं, हम बड़ा बनना चाहते हैं कि चलो लोग हमें जाने। कितने को जानेंगे? आज देखिए चार छः नाम ही है ना, न्यूटन और नेपोलियन और चार छः बड़े दुनियावी नाम है, इसके अलावा कौन किसको जानता है? और कितने खरबों के खरबों लोग आए और चले गए, लेकिन या लमुमा बैना अईदीहिम वमा खल्फहुम, उसको सब पता है। जाहिर भी पता, बातिन भी पता, नीयतें भी पता, इरादे भी पता। हम साथ बैठे एक दूसरे की नीयत नहीं जान सकते। माँ के पेट से बच्चा निकलता है और दुनिया में आ जाए तो माँ को नहीं पता कि इसको दर्द किस वजह से हो रहा है। कान का दर्द है कि सर का दर्द है? कितना अल्लाह सुबहान तआला का इल्म कामिल है। वला युहीतुना बिशय्यिन मिन इल्मिही, कोई उसके इल्म का इहाता ही नहीं कर सकता, इल्ला बिमा शा, हाँ मगर जितना वो खुद चाहे। अल्लाह का इल्म कौन सा है? आज दुनिया में जितने उलूम फैले हुए हैं ना, ये अल्लाह के उस इल्म का परताव है। मसलन आप देखिए कि हम सुनते हैं, सुनने का इल्म है ना, हमारे सुनने की एक हद है, लेकिन अल्लाह किस तरह सुनता है उसकी कोई हद नहीं। हम सुनते हैं, हमारे दो कान हैं, फिर कानों के अंदर सिस्टम पूरा चाहिए, फिर जो बोल रहे हैं वो बोल सके, फिर सुनेगा। अल्लाह इन सारी चीज़ों से बेनियाज है। चींटी की भी आवाज़ सुनता है रात के अंधेरे में, अंधेरी पहाड़ी पे कोई अगर जानवर बैठा है तो अल्लाह उसको भी जानता है, उसके कदमों की चाप भी सुनता है। सूरह अल अनाम में गालिबन आता है कि कोई पत्ता जमीन पे जो गिरता है अल्लाह को उसका भी पता है। हजरत मूसा और हजरत खिजर एक सफर पे थे इल्म के हसूल में, तो कश्ती पे बैठे तो देखा कि एक चिड़िया आई है और उसने समंदर में से कुछ कतरे पानी के अपनी चोंच में रखे हैं और उसके बाद उड़ गई। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा से कहा कि आपको पता है कि मेरे और आपके इल्म की मिसाल अल्लाह के आगे कैसी है? जैसे चिड़िया की चोंच में जो पानी है ना, ये हम सब दुनिया वालों का इल्म है, इल्म दीन का नहीं, दुनिया सब उलूम नॉलेज, और अल्लाह का इल्म ये समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। हम कैसे इल्म वाले बन सकते हैं और आलिम कहला सकते हैं? और आलिमा की डिग्री, जिसने अपने इल्म पे फख्र किया वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। जितनी अपने अंदर आजजी लाएंगे ना इल्म के बाद, उतनी अल्लाह आपको खैर देगा। बस ये कुर्सी यूह समावाती वाल अर्थ, उसकी कुर्सी ने समा लिया है जमीन व आसमान को। यहाँ लफ्ज कुर्सी क्या है हम नहीं जानते, गैब के मामलात में से है। कुरान में इसका जिक्र आ गया तो हम जान गए, लेकिन ये कुर्सी कैसी है? रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला के पाँव रखने की जगह। हमारे जहन में बैठने की जगह से कुर्सी मुराद आती है ना, हालांकि सिर्फ समझाने के लिए एक लफ्ज़ बोलती हूँ डरते हुए, क्योंकि ऐसी आयतों की तफसीर मैं तो नहीं करती जिससे अमल का तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ज़रा 19-20 की तो पकड़ होगी। अल्लाह का कदम रखने की जगह, जैसे फुट स्टेप्स नहीं होते, लोग कुर्सियों के आगे स्टेप रख लेते हैं, हदीस में आता है कि अल्लाह के कदम रखने की जगह को कुर्सी कहते हैं। बास ने इसको इकतदार कहा, उसकी कुदरत कहा, उसका इख्तियार कहा, और बास उस कुर्सी को दुनिया की कुर्सी से लेते हैं, लेकिन मैं तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं कहूँगी। बस है एक कुर्सी, कितनी बड़ी है, कैसी है, क्या है, ना इसके बारे में सवाल कीजिए, ना इसके बारे में सोचिए, बस अल्लाह की कुदरत को महसूस कीजिए कि उसकी कुर्सी ने जमीन आसमान को छाया हुआ है, उसके ऊपर है, तो सोचो कि वो खुद कितना बड़ा होगा। उसका इल्म, उसकी कुदरत, किस तरह इंसान उसका अहाता करे। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और उसको इन दोनों की हिफाजत बिल्कुल नहीं थकाती। किन दोनों की? समावात और अर्थ। हम जरा सा बड़ा घर ले जाते हैं ना, शौक में तो 2-4 दिन काम करेंगे, फिर थकना शुरू हो जाते हैं, फिर शिकवे, हाय अब साफ नहीं होता, हाय अब चलना। यहाँ तो आप लोग वैसे ही इससे मावरा, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में देखिए चार चार कनाल के घर लोगों ने बनाए हुए। तो मैं अक्सर जो बड़ी उम्र के 60 50 60 के लोग होते हैं, 15 दिन हो गए ऊपर ही नहीं गई, मासियाँ जाती हैं करके आ जाती हैं, अपने ड्राइंग रूम में नहीं जाते, लोग कहते छोड़ो कौन जाए। लेकिन अल्लाह इतनी बड़ी कायनात को बनाता भी और चलाता है, इसमें किस अकीदे का रद्द है? उन लोगों की सोच जो कहते हैं कि अल्लाह ने ये दुनिया बना तो दी है और अब कुतुब और गौसों के हाथ में दे दी है, नाउज़ुबिल्लाह के, अब अल्लाह मैनेजमेंट नहीं करा सकता पूरी, तो अल्लाह ने दूसरे बुजुर्गों के हाथ में दे दिए कि किसी को बेटे दे दो, किसी को बेटियां दे दो, ऐसी बात भी ना कहना। वो बहुत बड़ा है, वहुवल अलीयुल अज़ीम, उसको कोई थकन नहीं आती, वो उसके मिजाज में थकन नहीं। थकता वो है जिसको मुश्किल लगे चीज, अल्लाह को तो मुश्किल नहीं लगती। और आप देखिए कि ये नहीं कहा गया कि हुआ अली युल अजीम, कहा जा सकता था कि वो बुलंद और अजीम है, बल्कि क्या कहा, हुवल अली युल अजीम, वही बुलंद और वही अजीम है, और ज्यादा शिद्दत और एम्फेसाइज है। अल्लाह सुबहाना ताला के मुकाम पे कोई पहुंच ही नहीं सकता। हदीस में आता है कि किब्र अल्लाह की चादर है, जिसने अल्लाह से छीननी चाहिए यानी तकब्बुर किया, अल्लाह उसको जलील कर देगा। सूरत कसस आयत 83 में भी आता है कि ये दुनिया का घर है हम उन लोगों को देते हैं जो किसी किस्म की बड़ाई का इरादा नहीं करते, और अल्लाह ताला उनको उस चीज़ से फिर बेनियाज कर देता है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो हम सब इस सारी आयत को पढ़ने के बाद जो चीज़ महसूस कर सकें वो कीजिए, और वो कह के अपने रब की बड़ाई, और रब की बड़ाई नहीं सिर्फ अपना छोटा होना भी। हम जितने छोटे बन के रहेंगे ना, अल्लाह का बड़ा होना उतना दिखेगा। बस अपन नफ्स क्या कहता है, हाँ अल्लाह बड़ा है, मैं भी बड़ी हूँ, अल्लाह तू भी बड़ा, मैं भी बड़ी, हम दोनों दोनों बड़े बड़े बड़े। नहीं, तू बहुत बड़ा, मैं बहुत छोटी। फिरौन हलाक हुआ ना, बर्बाद कर दिया गया। कुरान सूरह दुखान आयत 31 में क्या फरमाता है, इन्नहु कान आलियम मिनल मुसरिफीन, यकीनन वो था ही बुलंदी इख्तियार करने वाला, हद से गुजरने वाला। तो जो बड़ा होगा अल्लाह उसको छोटा करेगा, अल्लाह ताला से दुआ करें कि उसकी अजमत हमारे दिल में आ जाए। रातों को पढ़ के सोएं, गौर व फिक्र करके सोएं, अपने सारे मामले अल्लाह के सुपुर्द कर दें, फिर आप देखेंगे आपको कितना सुकून मिलेगा। इस पे बाज़ लोगों ने वजीफे बनाए हुए, इसका खिसार खींचते हैं, कहते हैं जितने घरों में वो ताली की आवाज़ आए वहां तक शैतान नहीं आता। कुछ लोगों को मैंने खुद भी देखा फर्ज पढ़ने के बाद सर पे हाथ रख लेते हैं और आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। ऐसी बातें कहीं भी मसनून नहीं मिलती। आयतुल कुर्सी पढ़ना है, लेकिन उसके साथ किसी इस किस्म की कोई यानी मोटिवेशन, हरकत और मूवमेंट का कोई हुक्म नहीं मिलता। अब आप ये सारी बातें सुने, पीछे क्या बात चली? तिल का रसूल, रसूलों की बात हो गई। रसूल कह के सोचता है बंदा, अच्छा कौन होंगे रसूल? तो अल्लाह ने अपना तारुफ करा दिया कि मैं इतनी बड़ी हस्ती और वो किसी को रसूल बना के भेजे, तो तुम ना मानो, सोचो तुम किधर हो। बीच में इन्फाक फी सबीलिल्लाह का एक हल्का सा इशारा आ गया, ठीक है, और अब आयतुल कुर्सी में अल्लाह का तारुफ। अब इसके बाद समझिएगा, पूरे सबक के अंदर से जो असल में बात निकलेगी ना, वो अब आपको समझ आएगी।
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم